अब एक जरूरी बात जो अपनी जमात के आगे पेश करना चाहता हूँ ये है कि मैं देखता हूँ कि लंगर खाना के लिए जिस कदर मेरी जमात वक्तन फवक्तन मदद करती रहती है वो काबिले तारीफ है। हाँ, इस मदद में पंजाब ने बहुत हिस्सा लिया हुआ है। इसका सबब यह है कि पंजाब के लोग अक्सर मेरे पास आते जाते हैं और अगर दिलों में गफलत की वजह से कोई सख्ती आ जाए तो मोहब्बत और पै दर पै मुलाकात के असर से वह सख्ती बहुत जल्द दूर होती रहती है। इसलिए पंजाब के लोग खासकर बाज़ अफराद उनकी मोहब्बत और सिद्क और इखलास में तरक्की करते जाते हैं और इसी वजह से हर एक ज़रूरत के वक्त वो बड़ी सरगर्मी दिखलाते हैं और सच्ची इताअत के आसार उनसे ज़ाहिर होते हैं। और ये मुल्क दूसरे मुल्कों से नस्बतन कुछ नरम दिल भी है। वहीं हम इंसाफ से दूर होगा अगर मैं तमाम दूर के मुरीदों को ऐसे ही समझ लूँ कि वो अभी इखलास और सरगर्मी से कुछ हिस्सा नहीं रखते। क्योंकि साहबजादा मौलवी अब्दुल लतीफ़ जिसने जानसारी का ये नमूना दिखाया वो भी तो दूर की ज़मीन का रहने वाला था जिसके सिद्क और वफा और इखलास और इस्तकामत के आगे पंजाब के बड़े बड़े मुखलिसों को भी शर्मिंदा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि वो एक था कि हम सबसे पीछे आया और सबसे आगे बढ़ गया। इसी तरह बाज़ दूर दराज मुल्क के मुखलिस बड़ी बड़ी खिदमत माली कर चुके हैं और उनके सिद्क व सफा में कभी फतूर ना आया, जैसा कि अखवीम सेठ अब्दुलरहमान ताजर मद्रास और चंद ऐसे और दोस्त, लेकिन कसरत तादाद के लिहाज से पंजाब को मुकदम रखा गया है क्योंकि पंजाब में हर एक तबका के आदमी खिदमत दीनी से बहुत हिस्सा लेते जाते हैं। और दूर के अक्सर लोग अगरचे हमारे सिलसिले में दाखिल तो हैं मगर बवजह इसके कि उनको सोहबत कम नसीब होती है उनके दिल बकुल्ली दुनिया के गंद से साफ नहीं है। अमर ये मालूम होता है कि या तो आखिरकार वो गंद से साफ हो जाएंगे और या खुदा ताला उनको इस पाक सिलसिला से काट देगा और एक मुर्दार की तरह मरेंगे। बड़ी गलती इंसान की दुनिया परस्ती है। ये बदबख्त और मनहूस दुनिया कभी खौफ दिलाने से और कभी उम्मीद देने से अक्सर लोगों को अपने दाम में ले लेती है और ये उसी में मरते हैं। नादान कहता है कि क्या हम दुनिया को छोड़ दें, और यह गलती इंसान को नहीं छोड़ती जब तक कि उसको बेईमान करके हिलाक न करे। ए नादान, कौन कहता है कि तू असबाब की रियायत छोड़ दे, मगर दिल को दुनिया और दुनिया के फरेबों से अलग कर, वरना तू हिलाक शुदा है। और जिस अयाल के लिए तू हद से ज्यादा बढ़ता जाता है, यहां तक कि खुदा के फराइज को भी छोड़ता है और तरह तरह की मकारियों से एक शैतान बन जाता है, उस अयाल के लिए तू बदी का बीज बोता है और उनको तबाह करता है, इसलिए कि खुदा तेरी पनाह में नहीं क्योंकि तू पारसा नहीं। खुदा तेरे दिल की जड़ को देख रहा है, सो तू बे वक्त मरेगा और अयाल को तबाही में डालेगा, लेकिन वो जो खुदा की तरफ झुका हुआ है उसकी खुशकिस्मती से उसके जन और फरजंद को भी हिस्सा मिलेगा और उसके मरने के बाद कभी वो तबाह नहीं होंगे। जो लोग मुझसे सच्चा ताल्लुक रखते हैं वो अगरचे हजार कोस पर भी हैं तहम हमेशा मुझे लिखते रहते हैं और दुआएं करते रहते हैं कि खुदा ताला उन्हें मौका दे तब वो बरकात सोहबत हासिल करें। मगर अफसोस के बाज़ ऐसे हैं कि मैं देखता हूँ कि कतअ नज़र मुलाकात के साल हा साल गुजर जाते हैं और एक कार्ड भी उनकी तरफ से नहीं आता। इससे मैं समझता हूँ कि उनके दिल मर गए हैं और उनके बातिन के चेहरा पर कोई दागे जुजाम है। मैं तो बहुत दुआ करता हूँ कि मेरी सब जमात उन लोगों में हो जाए जो खुदा ताला से डरते हैं और नमाज पर कायम रहते हैं और रात को उठकर ज़मीन पर गिरते हैं और रोते हैं और खुदा के फराइज को ज़ाया नहीं करते और बखील और मुमसक और गाफिल और दुनिया के कीड़े नहीं हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि यह मेरी दुआएं खुदा ताला कबूल करेगा और मुझे दिखाएगा कि अपने पीछे मैं ऐसे लोगों को छोड़ता हूँ, लेकिन वो लोग जिनकी आंखें जिना करती हैं और जिनके दिल पाखाना से बदतर हैं और जिनको मरना हरगिज़ याद नहीं, मैं और मेरा खुदा उनसे बेजार हैं। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर ऐसे लोग इस पैवंद को कता कर लें, क्योंकि खुदा इस जमात को एक ऐसी कौम बनाना चाहता है जिसके नमूना से लोगों को खुदा याद आवे और जो तकवा और तहारत के अव्वल दर्जा पर कायम हो और जिन्होंने दर हकीकत दीन को दुनिया पर मुकद्दम रख लिया हो। लेकिन वो मुफसिद लोग जो मेरे हाथ के नीचे हाथ रख कर और ये कहकर कि हमने दीन को दुनिया पर मुकद्दम किया, फिर वो अपने घरों में जाकर ऐसे मफासिद में मशगूल हो जाए कि सिर्फ दुनिया ही दुनिया उनके दिलों में होती है, ना उनकी नज़र पाक है ना उनका दिल पाक है और ना उनके हाथों से कोई नेकी होती है और ना उनके पैर किसी नेक काम के लिए हरकत करते हैं और वो उस चूहे की तरह हैं जो तारीकी में ही परवरिश पाता है और उसी में रहता और उसी में मरता है। वो आसमान पर हमारे सिलसिले में से काटे गए हैं। वो अबस कहते हैं कि हम इस जमात में दाखिल हैं, क्योंकि आसमान पर वो दाखिल नहीं समझे जाते। जो शख्स मेरी इस वसीयत को नहीं मानता कि दर हकीकत वो दीन को दुनिया पर मुकदम करे और दर हकीकत एक पाक इनकलाब उसकी हस्ती पर आ जाए और दर हकीकत वो पाक दिल और पाक इरादा हो जाए और पलीदी और हरामकारी का तमाम चोला अपने बदन पर से फेंक दे और नौए इंसान का हमदर्द और खुदा का सच्चा ताबेदार हो जाए और अपनी तमाम खुदरवी को अलविदा कहकर मेरे पीछे हो ले, मैं उस शख्स को उस कुत्ते से मुशाबिहत देता हूँ जो ऐसी जगह से अलग नहीं होता जहाँ मुर्दार फेंका जाता है और जहाँ सड़े गले मुर्दों की लाशें होती हैं। क्या मैं इस बात का मोहताज हूँ कि वो लोग जबान से मेरे साथ हों और इस तरह पर देखने के लिए एक जमात हो? मैं सच सच कहता हूँ कि अगर तमाम लोग मुझे छोड़ दें और एक भी मेरे साथ न रहे तो मेरा खुदा मेरे लिए एक और कौम पैदा करेगा जो सिद्क और वफा में इनसे बेहतर होगी। ये आसमानी कशिश काम कर रही है जो नेक दिल लोग मेरी तरफ दौड़ते हैं। कोई नहीं जो आसमानी कशिश को रोक सके। बाज़ लोग खुदा से ज्यादा अपने मकर और फरेब पर भरोसा रखते हैं। शायद इनके दिलों में ये बात पोशीदा हो कि नबूवतें और रिसालतें सब इंसानी मकर हैं और इत्तफाकी तौर पर शोहरतें और कबूलियतें हो जाती हैं। इस ख्याल से कोई ख्याल पलीद तर नहीं और ऐसे इंसान को उस खुदा पर ईमान नहीं जिसके इरादा के बगैर एक पत्ता भी गिर नहीं सकता। लानती हैं ऐसे दिल और मलून हैं ऐसी तबीयतें। खुदा उनको जिल्लत से मारेगा क्योंकि वो खुदा के कारखाना के दुश्मन हैं। ऐसे लोग दर हकीकत दहरिया और खबीस बातिन होते हैं। वो जहन्नमी जिंदगी के दिन गुजारते हैं और मरने के बाद बुजुस जहन्नम की आग के उनके हिस्से में कुछ नहीं। अब मुख्तसर कलाम यह है कि इलावा लंगर खाना और मैगजीन के जो अंग्रेजी और उर्दू में निकलता है, जिसके लिए अक्सर दोस्तों ने सरगर्मी जाहिर की है, एक मदरसा भी कादियान में खोला गया है। इससे ये फायदा है कि नौ उम्र बच्चे एक तरफ तो तालीम पाते हैं और दूसरी तरफ हमारे सिलसिले के असूलों से वाकफियत हासिल करते जाते हैं। इस तरह पर बहुत आसानी से एक जमात तैयार हो जाती है, बल्कि बसा औकात उनके माँ बाप भी इस सिलसिले में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों में हमारा ये मदरसा बड़ी मुश्किलात में पड़ा हुआ है और बावजूद के मुहिब्बी अजीजी अकवीम नवाब मोहम्मद अली खान साहब रईस मालेर कोटला अपने पास से 80 रुपया माहवार इस मदरसे की मदद करते हैं, मगर फिर भी उस्तादों की तनख्वाहें माँ बाबा अदा नहीं हो सकती। सदा रुपया कर्जा सर पर रहता है। अलावा इसके मदरसा के मुतल्लिक कई इमारतें जरूरी हैं जो अब तक तैयार नहीं हो सकी। ये गम अलावा और गमों के मेरी जान को खा रहा है। इसकी बाबत मैंने बहुत सोचा कि क्या करूं। आखिर ये तदबीर मेरे ख्याल में आई कि मैं इस वक्त अपनी जमात के मुखलिसों को बड़े जोर के साथ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाऊं कि वो अगर इस बात पर कादिर हों कि पूरी तवज्जो से इस मदरसा के लिए भी कोई माहाना चंदा मुकर्रर करें, तो चाहिए कि हर एक उनमें से एक मुस्तहकम अहद के साथ कुछ न कुछ मुकर्रर करे जिसके लिए वो हरगिज़ तखल्लुफ न करे मगर किसी मजबूरी से जो कज़ा व कद्र से वाकया हो, और जो साहेब ऐसा न कर सकें उनके लिए बिस जरूरत यह तजवीज सोची गई है कि जो कुछ वो लंगर खाना के लिए भेजते हैं उसका चहारुम हिस्सा बराह रास्त मदरसा के लिए नवाब साहेब मौसूफ के नाम भेज दें। लंगर खाना में शामिल करके हरगिज न भेजें बल्कि अलहदा मनी ऑर्डर करा कर भेजें। अगरचे लंगर खाना का फिक्र हर रोज मुझे करना पड़ता है और उसका गम बराह रास्त मेरी तरफ आता है और मेरी औकात को मुशवश करता है, लेकिन ये गम भी मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए मैं लिखता हूँ कि इस सिलसिला के जवान मर्द लोग जिनसे मैं हर तरह उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरी इस इल्तमास को रद्दी की तरह ना फेंक दें और पूरी तवज्जो से इस पर कारबंद हों। मैं अपने नफ्स से कुछ नहीं कहता बल्कि वही कहता हूँ जो खुदा ताला मेरे दिल में डालता है। मैंने खूब सोचा है और बार बार मुतालिया किया है। मेरी दानिश में अगर ये मदरसा कादियान का कायम रह जाए तो बड़ी बरकत का मूजिब होगा और उसके जरिए से एक फौज नए तालीम याफ्तों की हमारी तरफ आ सकती है। अगरचे मैं ये भी जानता हूँ कि अक्सर तालिब इलम न दीन के लिए बल्कि दुनिया के लिए पढ़ते हैं और उनके वालदैन के ख्यालात भी इसी हद तक महदूद होते हैं, मगर फिर भी हर रोज की सोहबत पर जरूर असर होता है। अगर 20 तालिब इलमों में से एक भी ऐसा निकले जिसकी तबीयत दीनी अमूर की तरफ रागिब हो जाए और वो हमारे सिलसिला और हमारी तालीम पर अमल करना शुरू करे, तब भी मैं ख्याल करूंगा कि हमने इस मदरसा की बुनियाद से अपने मकसद को पा लिया। आखिर में ये भी याद रहे कि ये मदरसा हमेशा इस सुकम और जोफ की हालत में नहीं रहेगा, बल्कि यकीन है कि पढ़ने वालों की फीस से बहुत सी मदद मिल जाएगी या वो काफी हो जाएगी। बस इस वक्त जरूरी नहीं होगा कि लंगरखाना की जरूरी रकूम काट कर मदरसा को दी जाए। सो वसत के हासिल होने के वक्त हमारी ये हिदायत मनसूख हो जाएगी और लंगरखाना, जो वो भी दरहकीकत एक मदरसा है, अपने चहारों हिस्सा की रकम को फिर वापस पा लेगा। और ये मुश्किल तरीक जिसमें लंगरखाना का खर्च पहुंचेगा, महज इसलिए मैंने इख्तियार किया कि बज़ाहिर मुझे मालूम होता है कि जिस कदर मदद की जरूरत है, शायद जदीद चंदा में वो जरूरत पूरी ना हो सके। लेकिन अगर खुदा के फजल से पूरी हो जाए तो फिर इस खत्ते बुरीद की जरूरत नहीं। और मैंने ये जो कहा कि लंगरखाना भी एक मदरसा है, ये इसलिए कहा कि जो मेहमान मेरे पास आते जाते हैं, जिनके लिए लंगरखाना जारी है, वो मेरी तालीम सुनते रहते हैं। और मैं यकीन रखता हूँ कि जो लोग हर वक्त मेरी तालीम सुनते हैं, खुदा ताला उनको हिदायत देगा और उनके दिलों को खोल देगा। अब मैं इसी कदर पर बस करता हूँ और खुदा ताला से चाहता हूँ कि जो मुद्दा मैंने पेश किया है, मेरी जमात को उसके पूरा करने की तौफीक दे और उनके मालों में बरकत डाले और इस कार्य खैर के लिए उनके दिलों को खोल दे। आमीन सुमा आमीन। वसलामु अला मन तबा अल हुदा। 16 अक्टूबर 1903।